नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी समूह ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को इस अधिग्रहण की सूचना दी। कंपनी ने कहा, कंपनी की परोक्ष अनुषंगी और एनडीटीवी के प्रवर्तक समूह में शामिल RRPR ने एनडीटीवी में प्रणय रॉय और राधिका रॉय की 27.26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण परस्पर अंतरण के माध्यम से कर लिया है। समाचार टेलीविजन चैनल एनडीटीवी की शुरुआत करने वाले रॉय दंपति ने गत 23 दिसंबर को ही घोषणा कर दी थी कि वे इस मीडिया कंपनी में अपनी बची हुई 10.26% हिस्सेदारी से 27.26% हिस्सा अडानी समूह को बेच देंगे। अडानी समूह ने रॉय दंपति की हिस्सेदारी का अधिग्रहण 342.65 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किया। इस भाव पर 1.75 करोड़ शेयरों की बिक्री से रॉय दंपति को 602.30 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी ब्रिटिश साझेदार BP PLC ने पूर्वी अपतटीय गैस क्षेत्र KG-D6 से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए निविदा जारी की है। निविदा दस्तावेजों के मुताबिक KG-D6 ब्लॉक से प्रतिदिन 60 घन मीटर गैस की बिक्री के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। इस बोली के अनुरूप प्राकृतिक गैस की बिक्री फरवरी 2023 से शुरू होगी। वाहनों में ईंधन के तौर पर प्राकृतिक गैस को CNG में बदलने वाली, खाना बनाने के लिए घरों तक पाइप से LNG की आपूर्ति करने वाली, बिजली के उत्पादन या उर्वरक संयंत्रों में ईंधन के तौर पर गैस का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से बोलियां मंगाई गई हैं। इच्छुक कंपनियों से जापान कोरिया के लिए निर्धारित गैस कीमतों से अधिक बोली लगाने को कहा गया है। डिश टीवी के शेयरधारकों ने कंपनी की सालाना आम सभा में वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट किए हुए एकल और संचय वित्तीय विवरणों को अपनाने के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया। AGM का आयोजन बृहस्पतिवार को हुआ। इससे पहले कंपनी के शेयरधारकों ने 26 सितंबर 2022 को आयोजित 34वें AGM में पिछले 2 वित्त वर्ष के लिए कंपनी के बही खातों को मंजूरी देने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। डिश टीवी के सबसे बड़े शेयरधारक यस बैंक लिमिटेड और इसके पूर्व चेयरमैन जवाहरलाल गोयल के नेतृत्व वाले प्रवर्तक परिवार के बीच कंपनी में बोर्ड प्रतिनिधित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। YBL की कंपनी में 24% से अधिक हिस्सेदारी है और वह डिश टीवी बोर्ड के पुनर्गठन तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गोयल को हटाने की मांग कर रही है। भारतीय बाजार में नए साल में अधिक निवेशकों के सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ने से 2023 में सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें मार्च में $2,070 प्रति औंस के उच्च स्तर से नवंबर में $1,616 प्रति औंस के निचले स्तर तक आ गई और उसके बाद इसमें सुधार हो रहा है। साल 2022 की शुरुआत में सोने की कीमत करीब $1,800 प्रति औंस थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस बहुमूल्य धातु की कीमत $1,803 प्रति औंस है। जिंस बाजार मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सोना 54,790 रुपए प्रति 10 ग्राम जब रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 के करीब है। भविष्य में भू राजनीतिक स्थिति, मंदी की चिंता, मुद्रास्फीति के रुझान और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कम मांग जैसे कई कारकों से सोने की कीमतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा की जगह अब अन्य शहरों को तहरीज दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इन शहरों के मुकाबले लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों में 60% से अधिक नई रियलिटी परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामकीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध पंजीकरण आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार केवल 2022 में उत्तर प्रदेश रेरा ने लगभग 225 परियोजनाएं पंजीकृत की। इनमें से 150 से अधिक परियोजनाएं राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों से इधर गईं। इन शहरों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, मथुरा और मुरादाबाद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश रेरा की स्थापना वर्ष 2017 में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने, पारदर्शिता लाने, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं और बिल्डरों के विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस पर घरेलू शेयर बाजारों में ऊंचे स्तर पर बिकवाली का जोर रहने से शुक्रवार को दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 293.14 अंक यानी 0.48% नुकसान के साथ 60,840.74 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 258.8 अंक चढ़कर 61,392.68 अंक तक पहुंच गया था, लेकिन बिकवाली होने से इसने सारी बढ़त गंवा दी। इसी तरह एनएसई का सूचकांक निफ्टी भी 85.70 अंक यानी 0.47% गिरकर 18,105.30 अंक पर बंद हुआ था। ये वर्ष 2022 का अंतिम कारोबारी दिन था। गेहूं का कुल रकबा एक साल पहले की तुलना में 3.59% बढ़कर 325.10 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। रबी फसलों की बुआई अब समाप्त होने की ओर है। शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मक्का, ज्वार, चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलें हैं। इन फसलों की कटाई अगले साल मार्च अप्रैल में शुरू होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।